لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعد الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله في كتاب حكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. صدق الله العظيم. مومنین، یہ سورہ فاتر کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا، یہ گیارہویں آیت ہے. اس کا ترجمہ اس طریق سے: اور اللہ تمہیں پیدا، اللہ نے تمہیں پیدا کیا تراب سے، پھر نطفے سے، پھر تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، اور جو مادہ حاملہ ہوتی ہے اور بچہ جنتی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، نہ کسی بڑی عمر والے کو کی عمر دراز کی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر میں کمی کی جاتی ہے، مگر یہ سب لوح محفوظ میں موجود ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت کا ذکر کیا، بلّہ خلقکم من تراب، اللہ نے تمہیں پھر مٹی سے پیدا کرا. تو مٹی سے مراد آدم علیہ السلام کی خلقت سے ہے کہ ان کو مٹی سے پیدا کرا تھا. باس کا کہنا ہے کہ مٹی سے مراد ہم سب انسان ہیں، پوری بشریت مٹی سے پیدا ہوئی ہے، ایلیمنٹ سے پیدا ہوئے نا، سوڈیم، کاربن، ہائیڈروجن، یہ سب چیزیں ایلیمنٹس. تو ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. تم میں نطفہ تھی، پھر ہم نے تمہیں نطفے سے پھر تمہیں تم میں نطفہ تھی پھر نطفے سے بنایا، مطلب پہلے تو مٹی سے بنایا پھر نطفے سے بنایا. تو نطفے سے مراد یہ ہے کہ ایک جنریشن سے ہم دوسری جنریشن میں جب جاتے ہیں، جبکہ نطفہ آدمی سے عورت کی طرف جاتا ہے، تو اس طریقے سے جنریشن بڑھتی ہیں. پہلے تو مٹی سے خلقت ہو گئی، لیکن آگے خلقت کیسے چلے گی؟ تو وہ خلقت کا سلسلہ نطفے سے ہوا. ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا، پھر اس کے جوڑا بنایا اللہ نے. دو طرح کے بنے بشریت میں، دو چیزیں پیدا ہوئی، مرد اور عورت، اس سے جوڑا آگے چلا. پھر اللہ نے کہا کہ کوئی، پھر اللہ نے کیا کہا؟ نہ تو کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے، نہ بچہ جنتی، مگر اس کے علم سے. اب اس کا جو حمل ہوتا ہے، بچہ جننا بھی ہے، وہ اللہ کے، وہ بھی قدرت اللہ کی ہے. اللہ اپنی پوری قدرت ظاہر کر رہا ہے، مٹی سے نطفہ، نطفے سے جوڑا، جوڑے سے حاملہ ہونا، حاملہ سے بچہ جننا، سارا سلسلہ سب اللہ کے علم میں ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ کہ نہ کسی کی عمر بڑھائی جاتی ہے، نہ کسی کی گھٹتی ہے، مگر وہ لوہے محفوظ میں موجود ہے، مطلب کہ آپ کی جتنی عمر ہے وہ لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی، وہ فکسڈ ہے. تو جو بھی ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے. تو سرکار کی کیا حدیث ہے کہ بے شک صدقہ دینے سے اور قرابت داروں میں اصلاح کرانے سے عمر بڑھتی ہے، دو چیزوں سے عمر بڑھتی ہے، صدقہ اور جو قربا ہے ان میں اصلاح کرا دینا، اس سے عمر بڑھتی ہے. پھر سرکار نے فرمایا کہ جو چاہتا کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ قربا کی محبت کو بڑھا، آپس میں جو بھی قربا ہیں ان میں ان کے تعلقات کو مضبوط کرے، تو اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کی عمر میں بھی اضافہ ہوگا. تو یہ چیزیں ایسی کہ ہم کو چاہیے کہ ہم پوری کوشش کریں کہ اللہ نے اپنی خالقیت ظاہر کری ان آیتوں میں، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو خلق کرا مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر جوڑا بنایا، پھر کس طرح عورت حاملہ ہوتی ہے، وہ بچہ جانتی ہے، سب اللہ کے علم ہے. उमर का पढ़ना घटना सब अल्लाह के हाथ में, ताकि अल्लाह की खालकियत जाहिर हो। वमा यस्तबिल अहराम हाजा अजगुन फुरातुन साइगुन शराबुहु वा हाजा मिल्हुन उजार वमिन कुल्ली तक्कुलु लहमन तरियं वतस्तखरिजु हिलियतन तलबिसूनहा वतरल फुल्क फीही मवाखिरी लितबतगु मिन फजलिही वलअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह ताला ने दो समुद्र की मिसाल दी, तर्जुमा इस तरीके से, और दो समंदर बराबर नहीं हो सकते, एक शीरी प्यास बुझाने वाला है और उसका पानी नहायत खुशगवार है, और दूसरा खारा सख्त कड़वा है, और हर एक में से तुम ताज़ा गोश्त खाते हो और जेवर निकालते हो जिन्हें तुम पहनते हो, और तुम उसमें कश्तियों को देखते हो पानी को फाड़ कर चलने वाली, ताकि तुम अल्लाह के फल तलाश करो और उसके शुक्रगुजार हो। अब दो तरह के समंदर ने बताए, एक उसका पानी शीरी है प्यार बुझाने वाला और नहायत ही खुशगवार है जो हम जो पानी पीते मीठा पानी, और दूसरा खारा सख्त। तो जो ज़्यादातर समुद्र का पानी तो बिल्कुल खारा सख्त होता है, और जैसे किसके सी मीठा है या दूसरे जितने दरिया हैं वो मीठे हैं, तो दोनों के अलग अलग अल्लाह ने मिसाल दी है। फिर क्या कहा अल्लाह ने कि उसमें से तुम ताज़ा गोश्त खाते हो, यानी क्या मछली या जो के सी बर्ड्स होती हैं डक्स होती है, ये सब तुम खाते हो, गोश्त खाते हो उसमें से, और उसमें से तो जेवर निकाल के पहनते हो, जो दरिया में से मूंगे मोती निकलते हैं उससे जेवर बनते हैं ना, वो पहनते हो तुम। तो उसमें एक बहस है, गोश्त हम दोनों दरियों से खाते ही, लेकिन मूंगे मोती तो जनरली साल्टी वाटर से निकलते हैं खारे पानी से, लेकिन रिसर्च ने बताया कि मूंगे मोती फ्रेश पानी में भी होते हैं, ऐसा नहीं। फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा कि तुम देखते हैं कि कश्तियां पानी को फाड़ते चलती है, ये भी अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ने बनाई डेंसिटी के, पानी की डेंसिटी अलग है, लकड़ी की डेंसिटी अलग है, किस तरह से कश्तियां फाड़ती है पानी को चेंज ऑफ डेंसिटी से, फिर कैसे कैसे विंड करंट से चलती है वो। ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट जो दुनिया में होता है अभी तो एयरप्लेन अभी आए 100 साल पहले या थोड़ा ज़्यादा, लेकिन उससे पहले जितना ट्रांसपोर्टेशन होता था वो कश्तियों से ही होता था, आज भी जो मेजर ट्रांसपोर्टेशन है कश्तियों से ही है। ये अल्लाह की से बरकत है, अल्लाह अपनी बरकत बयान कर रहा है, ताकि तुम उससे अल्लाह का फर्ज तलाश करो, लअल्लकुम तश्कुरून, ताकि तुम शुक्र गुजार बनो उसके। अब इसमें भी दो चीज़ें हैं भाई, एक तो मैं मिसाल ये है अल्लाह ने दी कि एक का पानी मीठा है प्यास बुझाने वाला, एक का खारा है, ये बात तो जाहिर है, लेकिन इसमें कुछ बातनी मफहूम भी है। क्या है कि मीठे पानी से मुराद मोमिन का दिल है और खारे पानी से मुराद काफिर है, इसका जो कल सख्त होता वो अल्लाह का इनकार करता है या शिर्क करता है, और मोमिन का कल नर्म होता है। दिक्कत दोनों इंसान है लेकिन दोनों में फर्क है। यूलिजुल लैल फिन नहारी व यूलिजुल नहार फिल लैल व सख्खर अश-शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी ली अजलिन मुसम्मा ज़ालिकुम अल्लाह रब्बुकुम लहुल मुल्क वल्लज़ीन यद'ऊना मिन दूनिही मा यम्लिकूना मिन क़ित्मीर। और रात को वो दिन में दाखिल करता है और दिन को वो रात में दाखिल करता है, और उसने सूरज और चांद को मुसख़्ख़र कर दिया है हर एक मुकर्रर वक्त के लिए रवा दवा है। यही अल्लाह तुम्हारा रब है, बादशाही उसी की है, और तुम उसके सिवा जिन्हें पुकारते वो खजूर की गुठली के छिलके के बराबर भी इख्तियार नहीं रखते। अल्लाह ने कहा कि वो रात को दिन में दाखिल करता है, दिन को रात में दाखिल करता है। मैं इस पर रुकता हूँ, मीज़ान ने क्या कहा, दाखिल करने से मुराद है कि रात को आगे बढ़ा देना, उसका मीज़ान का कहना है कि रात को आगे बढ़ा देना, और दिन को दाखिल करना मतलब दिन को आगे बढ़ा देना, इससे क्या मतलब, सर्दियों के अंदर रातें आगे बढ़ जाती दिन से बड़ी हो जाती रात, गर्मी में उल्टा होता है, गर्मी में दिन बढ़ जाता है और रात छोटी होती, इससे मौसम की तब्दीली आती है, इसके असरात होते हैं काश्त पे। और दूसरा क्या है इससे मुराद, जो कहा गए रात को दिन में दाखिल करना, दिन को रात में दाखिल करना, धीरे धीरे होता, एकदम नहीं होता। अगर आप सोचें कि सूरज हो एकदम गुरु हो जाए तो हमारी फिजियोलॉजी पे कितना अफेक्ट पड़ेगा, स्ट्रेस आएगी। या ये कि जो या अगर हमारे दिन के काम होते हैं जिसका आजकल अगर जंगल में और एकदम से गुरु हो गया सूरज तो उसको मौका ही नहीं मिलेगा अगर वो आए काश से और वापस घर पे आ जाए। तो अल्लाह ने धीरे धीरे चेंज लाया, दिन को रात में हल्के से बदला ग्रेजुअली, रात को दिन पे हल्के से बदला ग्रेजुअली। अगर आप सोचें कि रात से एक दो दिन हो जाए और कहो जाओ उठ जाओ जाओ वो काम पे जाओ स्कूल पे जाओ, तुम्हारी बॉडी वो प्रेशर नहीं ले पाई, उसको धीरे धीरे उठना पड़ता, धीरे धीरे उठती है, हमारा दिमाग भी धीरे धीरे तैयार होता जाने को भी काम पे जो भी है। तो अल्लाह ने खूबसूरती रखी है कि हर चीज होती है धीरे धीरे होती है, ये सब अल्लाह की हिकमत है। और कहा तुम जिसको पुकार दो अल्लाह के सिवा मा यमले कून मिन कतमीर, मतलब जिनको तुम पुकार दो अल्लाह के सिवा ये जो खजूर की गुटली के ऊपर जो छिलका होता है उसके बगैर बराबर नहीं, वो कुदरत नहीं रखते दुनिया में किसी काम के नहीं है। अब अल्लाह ताला उन की बातें कर रहा है जो के बुत हैं उनके बारे में अल्लाह ने आगे फरमाया अगली आयत में, इन तदउहुम ला यस्मउ दुआकुम वलौ समिउ मा मस्तजाबु लकुम वयौमल क़ियामति यकफुरून बिशिर्किकुम वला युनब्बिउक मिस्लु खबीर। तुम अगर उन्हें पुकारोगे तो वो तुम्हारी पुकार नहीं सुनेंगे और अगर उन्होंने सुन भी लिया तो तुम्हें जवाब नहीं देंगे और वो कयामत के दिन तुम्हारे उस शिर्क का इनकार कर देंगे और कोई आपको इस बाखबर अल्लाह की तरह खबर नहीं करेगा। अब अल्लाह ताला उन बुतों की बात करता है, अगर तुम उनको पुकारो उन बुतों को तो वो तुम्हारी बात का जवाब ना देंगे और अगर सुन भी लिया तो वो नहीं, अगर तुमने उनको पुकारा तो तुम्हारी पुकार को नहीं सुनेंगे, ये दुख वो तो आपकी पुकार को नहीं सुनते ना, वो लो यस नाऊ माँ यस तजाबू लगू, अगर सुन भी लिया तो जवाब ना देंगे। अब बुध किसे सुनेंगे, अब इस पर बहस है तो मिजान ने उसको उसकी तफसील बयान करी, मैं आपको बताऊंगा। वो योमल कयामत यकफुरु भी शिर्क को, और कयामत तो तुम्हारे शिर्क का इनकार कर देंगे, अभी कौन करेगा इनकार, बुध तो नहीं करेंगे ना, अभी कौन करेगा। और तुमको अल्लाह के जो के बाखबर है उसके सिवा कोई भी ऐसी तुम्हारी बातें तुमको बताएगा नहीं कयामत दिन, जो अल्लाह तुम्हें बताएगा खोल खोल के तुमने क्या करी थी हरकतें। अभी बहस को मैं बयान करता हूँ। अब इसके अंदर दो तरह के अल्लाह ने बताए हैं, एक तो होते हैं बुध और एक होते हैं जिनको के लोगों ने जान के खुदा बनाया, पैगम्बरान को या फरिश्तों को, जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम को कह दिया कि खुदा का बेटा है, तो उनकी अल्लाह बात कर रहा है इसमें। क्या अगर उन्होंने तुम्हारी बात को सुन भी लिया तो तुम्हारी बात का जवाब ना देंगे। अगर आपने पैगम्बरान को इस तरह पुकारा है कि वो माजल्ला खुदा है तो आपकी बात का जवाब ना देंगे, मीजा ने बात साफ कर दी। अगर आपने पुकारा उनको कि आप खुदा हैं मैं आपको पुकारता हूं, आपको जवाब नहीं देंगे। उसमें भी ये है कि ये जब लोग बरज़ख में रहते हैं अंबिया और जो औलिया अल्लाह के, उनकी भी सुनने की फैकल्टी ऐसी इंडिपेंडेंट नहीं होती, जब तक अल्लाह उनको नहीं सुनाना चाहेगा आपको वो नहीं सुनेंगे। हालांकि मतलब इसमें बहस चौदह होते हैं वो जिंदा होते हैं लेकिन अल्लाह के हुक्म से होते हैं, और जो भी वो काम करते हैं बरज़ख में वो अल्लाह के हुक्म से होता है और अल्लाह की रजा से होता है, मगर अल्लाह की रजा के वो कुछ नहीं करते, है ना। तो ये फाइन पॉइंट है। तो अगर उनको आपने खुदा की तरह पुकारा तो आपकी बात का जवाब देंगे ही, अगर वो उनको जो भी उनको आप पुकार रहे हो, अगर आप खुदा का बंदा बन के पुकार रहे हो या उनसे शफात लेना चाह रहे हो, वो दूसरा मुद्दा है। उसके अंदर वो अल्लाह की इजाजत से जो अल्लाह इजाजत देगा उस हिसाब से आपकी शफात ही करेंगे। मतलब के नरेशन है कि सरकार के जो के सहाबा थे उनकी वफात के बाद कोई मुश्किल आती थी तो सरकारी खबर पे जाते थे और दुआ करते थे और सरकार से कहते थे कि आप हमारी शफात करें, हमारी मुश्किल आसान करें, तो मुश्किल आसान होती थी। आज हम भी जाते हैं मौला मुत्तकियान की बारगाह में या करबला, तो ये सब वो लोग जिंदा हैं, लेकिन जो भी वो काम कर रहे हैं वो अल्लाह की रजा से कर रहे हैं। अगर आप उनको अल्लाह की तरफ पुकार रहे हो तो आपको रद्द कर देंगे वो, और जो भी शफात होती है सुनते हैं वो अल्लाह के फजल करम से उनकी तरफ, वो उससे इंडिपेंडेंट नहीं है। ये बहस है, और इस बहस को साफ करानी जाना, हमको इस बात को क्लियर हो जाना चाहिए फंडामेंटल। या अय्युह अन्नास अंतुम फुकराउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनीयुल हमीद इन यशा युज़हिबकुम व यत्ती बि खल्क़िन जदीद व मा दालिला अलल्लाहि या अज़ीज़। इंसानों, तुम सब के सब अल्लाह के मोहताज हो और अल्लाह तो बिल्कुल बेनियाज और लायक हमद है। अगर वो चाहे तो तुम्हें ले जाए ना फना कर दे और नई मखलूक को ले आए। अल्लाह बता रहा है कि हम कितने मोहताज हैं उसमें। ये पूरी कायनात अल्लाह की मोहताज है। असली बाहियात कौन है? अल्लाह है, हय्युल कय्यूम, वो हई है। बाकी सबको तो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत है ना, हर चीज़ को फना होना सिवाय उसके। लेकिन जो भी उसने जिसको भी हयात दी अपनी हयात की वजह से दी है, इसलिए सारी हयात उसकी मोहताज है कि अगर वो ना हो तो हम एक मिनट, हमारा कोई एग्जिस्टेंस बचे ही नहीं दुनिया में। अगर उसकी हम हर साल उसकी मोहताज है, हर पूरी बदन हमारा उसका मोहताज है, हर चीज मोहताज है उसकी। इसलिए ना हम तो फकरा, हम फकीर हैं, हम सिर्फ मांगने वाले उससे। इल्लाह वल्लाह गनी अमीर, वो गनी, उसको हमारी जरूरत ही नहीं है। हम सबके सब कुफ्र कर दें, हम सबके सब कुफ्र कर दें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गनी अमीर, उसकी तारीफ है, हम उसकी तारीफ करें ना करें, लेकिन हक है कि वही काबिल तारीफ है। ही ऐसा को चाह उनको नाबूद कर दे, नई जनरेशन गया और उसके लिए उसकी बात कोई मुश्किल नहीं है। कितनी जनरेशन आगे चलेंगी दुनिया से, फिरौन चले गए, हारून चले गया, सब चलेगा ना, कहाँ चले गए, सब चले गए, दूसरी जनरेशन सामने आ गई। आज हम चले आएंगे नहीं आ जाएगी, अल्लाह का परवानी है हमारी, सब कोई हमारी, हम सब फकीर अल्लाह के। ये बात हमारे को समझ में आना चाहिए। अब अल्लाह ताला कयामत का जिक्र कर रहा है, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़रा व इन तदउ मुस्क़लतुन इला हिमलिहा ला यहमिलु मिन शैउं वलौ काना ज़ा क़ुरबा इन्नमा तुंज़िरु लदीना यख़्शौना रब्बहुम बिलग़ैबि व अक़ामु अस्सलाह व मन तज़क्का फ़इन्नमा यतज़क्का लिनफ़्सिही व इलल्लाहिल मसीर। और कोई बोझ उठाने वाला दूसरे के गुनाहों का बोझ नहीं उठाएगा, और कोई बोझ लदा शख्स अपना बोझ उठाने के लिए किसी को पुकारेगा तो उसकी उसके भाव को का अदना हिस्सा भी हटाने के लिए कोई ना आएगा, चाहे वो करीब तरीन रिश्तेदार ही क्यों ना हो। आप उन लोगों को डरा सकते हैं, अल्लाह सरकार से कह रहा है, ए नबी, आप उन्हीं लोगों को डरा सकते हैं जो बेदेखे अपने रब का खौफ रखते हैं और उन्होंने नमाज कायम की, और जो भी पाकीज़गी इख्तियार करता है तो वो तो उस तज़किए का फ़ायदा खुद उसी को पहुंचता है, और सबको अल्लाह की ही तरफ लौट कर जाना है। या अल्लाह, अल्लाह कह रहा है फ़ायदा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, और कोई बुलाया कि मेरा बोझ उठा लो, भले ही पास का रिश्तेदार भी हो, तो उसका जरा सा बोझ नहीं उसको उठाएगा उसके साथ। सब अपनी अपनी नफसा मस्ती में रहेंगे। फिर सरकार, अल्लाह ने कहा सरकार को, इन्नमा तुंदिरु लदीन यख्शौना बि रब्बिहिम गैर, कहा कि तुम उसी को डरा सकते हो जो अपने परवरदिगार से गैब से डरता रहता है, बगैर देखो से डरता है, और जो सलात करता है उसी को डरा सकते हो जो अल्लाह से डरता है और सलात कायम करता है। और अल्लाह कहता है जो भी पागल होता है अपने लिए पाक होगा। वो मन तजक्का फइन्नमा यतज़क्का लिनफ़्सिही, हम आए थे क़द अफ़लाह मन ज़क्का हो, है ना, आए थे ना, वो कामयाब है जो पाक हो गया, अल्लाह ने वही कहा। फमन तजक्का फइन्नमा यतज़क्का लिनफ़्सिही, जो पाक हुआ खुद के लिए हुआ, वो इलल्लाहिल मसीर, हमको अल्लाह की तरफ लौट के जाना। तो पाक होने की निशानी क्या है कि हम अल्लाह से, जो पाक होता है उसकी दो निशानियाँ होती हैं, एक तो क्या, वो अल्लाह से गैब पे डरता, बगैर देखे अल्लाह पे डरता, वो नमाज पढ़ता। अब अल्लाह ताला, अभी हमने क्या क्या पढ़ा, अभी अल्लाह ताला ने सारी बातें बताई ना। पहले तो अल्लाह ने बताया हमारी खिलकत कैसे होती है, उसके बारे में पूरा जिक्र करा, फिर हमारी उम्र के बारे में जिक्र करा, फिर बताया कि मीठा पानी खारा पानी, फिर इसकी मिसाल मोमिन और काफिर से भी बताए, फिर जिनको रात में दाखिल करता रात को दिन में दाखिल करता वो बताया, फिर कहा कि जो तुम दूसरों को पुकारते हो किसी काम के नहीं हो, वो बात हो चुकी है, फिर बताया हम कितने फ़कीर अल्लाह के सामने बताया, फिर अल्लाह ने क़याम का जिक्र करा। कि कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा और अल्लाह चाहता है हमसे पाक हो जाए। फिर अल्लाह ने क्या कहा, अब क्या कहे, अल्लाह कहता है नबी को तुम ये आयतें पढ़ दो, अब इसमें दो तरह के लोग तुम्हारे सामने होंगे। ये बात तो साफ हो चुकी है तुम्हारे सामने, लेकिन इसमें दो तरह के लोग हैं। अब अल्लाह बताता है वो कौन लोग हैं, वमा यस्तविल आमा वल बसीर वला ज़ुलमाति वन नूर वला ज़िल्लुन वला हरूर वमा यस्तविल अहयाउ वल अमवात इन्ना ला यस्मउ मन यशाउ वमा अंता बिमुस्मिइन मन फिल क़ुबूर इन अंता इल्ला नज़ीर। अब अल्लाह ने बताया कि अब तक ये बात तो सब हो गई क्लियर, लेकिन अल्लाह ने कहा कि अब दो दो ग्रुप है, दो ग्रुप है इसमें। अब मैं पढ़ना शुरू करता हूँ तर्जुमा। अंधा और देखने वाला दोनों बराबर नहीं, और ना ही तारीखियां और रोशनियां यकसा हैं, और ना ही ठंडी छां और धूप की तपिश एक जैसी है, और ना ही जिंदगी पाने वाले और मुर्दे मसावी हैं। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है सुनवाता है, और जो लोग कब्रों में हैं उन्हें सुनाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बस आप तो डराने वाले हैं। अल्लाह ने कह दिया दो ग्रुप है। अब भले कितनी आयत पढ़ दी जाए, अल्लाह ने कहा कि अंधा और देखने वाला बराबर नहीं है, न तारीखियां न रोशनियां। जो लोग काफिर हैं वो अंधे भी हैं और अंधेरों में, और जो मोमिन है वो देखने वाले हैं रोशनियों में, वो न ठंडी छांव न धूप। मोमिन इंशाल्लाह जन्नत में ठंडी छांव में रहेंगे, और काफिर दोजख की तपिश में रहेगा, और न जिंदगी पाने वाले और न मुर्दा मसावी है। जो मोमिन है वो जिंदा है दुनिया में, शोदा है वो जिंदा है, और जो लोग काफिर है वो मुर्दा है। अल्लाह कहता है बेशक अल्लाह जिसे चाहता सुनाता है। अब दो ग्रुप में अल्लाह जिसको चाहेगा सुनाएगा, जिसके कल में कुछ बाकी अल्लाह देखेगा उसको सुना देगा, उसको जिंदा कर देगा, और जिसके कल में मक्कारी है सरकशी है कजी है अल्लाह उसको गुमराह कर देगा। अल्लाह कहता है बेशक अल्लाह जिसे चाहता है सुना देता है, और जो लोग कब्रों में है उन्हें सुनाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कौन है कब्रों में, जिनके दिन दुनिया में लगे हुए हैं, जिनके दिलों पर पर्दे पड़े हुए हैं गुनाहों की वजह से, ख्वाही नफ्सानी की वजह से, वो इस तरह से अगर हम उनको कुरान सुनाएंगे तो भाग जाएंगे। कैसे भागते हैं, जिसे गधा शेर को देख के भागता है इस तरह भागते हैं। अल्लाह ने इसका जिक्र करा कुरान में, अल्लाह ने इस तरह भागते हैं क्योंकि वो मुर्दा है, उनके दिल मुर्दा है। मोमिन का दिल यहां भी जिंदा है, और मोमिन जब इंतकाल पाता है हुब्बे अहले बैत में तो भी शहीद होता है, तो भी जिंदा होता है। लेकिन कुफार यहां भी मुर्दा है, वो वहां तो जो उनको अजार है वो है। तो अल्लाह ने कहा कि तुम जो कब्रों में उन्हें सुनाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बस आप तो डराने वाले का, ए रसूल तुम सिर्फ डराने वाले हो। इन्ना अरसलनाक बिलहक बशीरन व नदीरा व इन मिन उम्मतिन इल्ला खिलाफिया नदीर व इन यकज्जबुका फकद कज्जबल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम जाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनात व बिज़्ज़ुबुरि व बिलकिताबिल मुनीर। हमने आप हक के साथ बशीर और नजीर बनाकर भेजा है, और कोई उम्मत ऐसे नहीं गुजरी जिसने कोई डराने वाला ना आए। ए नबी, अगर ये लोग आपको झुटलाते हैं तो उनसे पहले गुजरे हुए लोगों को भी झुटला चुके हैं। उनके मुरसलीन उनके पास वाज़े दलाइल और सहीफे और रोशन किताबें लेकर आए थे। तो इसमें अल्लाह ताला ने कहा कि हमने आपको नबी बशारत देने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है, यानी जन्नत की बशारत और दोज़ख का डर। और हर उम्मत में से कोई ना कोई नजीर होता है डर सुनाने वाला होता है। अब इसकी बहस है, अब हर उम्मत में कैसे होता डर सुनाने वाला, क्या वो पैगंबर होता है या कोई आलिम दीन होता है जो डर सुनाता है, ये बहस है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर शहर में पैगंबर आ जाए। अल्लाह की सुन्नत है कि किसी आयते हैं इस बारे में भी कि अल्लाह किसी बड़ी बस्ती में भेज देता है पैगंबर, फिर उसकी खबर दूर फैलती चली जाती है। अब जैसे मक्का में सरकार आया, लेकिन सरकारी खबर धीरे धीरे सब दूर फैल गई। मतलब ये जिम्मेदारी होती है जो कि दूर रहते हैं कि शहरों में क्या हो रहा है, और शहर वालों की जिम्मेदारी होती है दूर पैगाम पहुंचाना, दोनों चीजें होती हैं। इसलिए सरकार ने अपने मिशन हर तरफ भेजे थे। जब सरकार आए थे तो सारे खत लिख लिख के भेजे थे, फारस भेजा था खत, और सब दूर भेजा था। सरकारी खत मशहूर है ना, ईरान भेजा खत और रोम भेजा हर जगह, ताकि खबर फैले। इस तरह से अल्लाह खबर फैलाता है हर तरफ, अल्लाह अपनी हुज्जत को तमाम करता है। फिर अल्लाह कहता है अगर तुमको झुटलाया है नबी तो तुमसे पहले भी آئے تھے رسول ان کو جھٹلایا تھا, جو کیا لے کے آئے تھے, کھلی نشانیاں لے کے آئے تھے, وہ صحیفہ لے کے آئے تھے. زبری کیا ہوتا ہے, زبر صحیفہ, صحیفہ کیا ہوتا جو کہ داؤد علیہ السلام کو ملا تھا. صحیفہ میں کیا ہوتا, صحیفہ کے اندر شریعت نہیں ہوتی, صحیفہ کے اندر دعائیں ہوتی ہیں, اللہ کی تعریف ہوتی ہے, حمد ہوتی ہے. تو صحیفہ وہ بالکل کتاب المنیر, یعنی کہ قرآن ہوا, کتاب المنیر یا بائبل ہوئی, انجیل ہوئی, کتاب المنیر جس یا تورا ہو, اس کے اندر اللہ کی شریعت تھی, تو ان کو کتاب المنیر کہا. تو یہ سب لے کے آیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا, لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ کربلا میں کیا ہوا, کربلا کے اندر سب کو معلوم تھا کہ یہ حسین حق پہ ہیں, اور یہ ہے کہ سرکار کے صاحبزادے ہیں, بچپن سے لوگ دیکھتے آ رہے تھے امام حسین علیہ السلام کو, اس کے باوجود وہ لوگ اندھے ہو گئے تھے, گمراہ ہو گئے تھے. اور جس طرح اللہ نے کہا دو دو گروہ بن جاتے ہیں, گمراہ ہو گئے تھے, کیوں, کہ دنیا پرست تھے, ان کو دنیا پسند آتی تھی. یہ مثال اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے دے دی, امام حسین کا گروہ دکھا کے, کہ اگر تمہیں امام مہدی کے گروہ میں آنا ہے تو تم کو سیکھنا پڑے گا کربلا سے, کہ جو اگر حب دنیا اختیار کری, آج تک حب دنیا بہت زیادہ بڑھ گئی, دنیا میں شیعوں میں بڑھ گئی ہے, مسلمانوں میں بڑھ گئی ہے, ہر آدمی برانڈنگ کی بات کرتا ہے, ہر طرف ہی بیماری ہے. اگر حب دنیا ہوگی تو ہم ہماری مثال یہ ہوگی کہ ہمارے دل مردہ ہوتے چلائیں گے, ہم ایک حب رکھ سکتے ہیں, اللہ حب رکھیں یا دنیا کی حب رکھیں, دنیا کے جو کام کریں اللہ کے لیے کریں. آپ چیزیں استعمال کریں لیکن اس سے دل نہیں لگا ہے, دل اللہ میں لگا ہے. آپ کچھ چیز استعمال کریں تو شکر الحمد للہ, لیکن دل اللہ میں لگا رہے گا تو اللہ ہدایت دیتا رہے گا. لیکن اگر دل دنیا میں لگا لیا اور اٹکا ہوا دل اس میں اور اسی لیے بس جی رہے, تو پھر اللہ کہے گا تیرے دل میں ایک خدا ہو سکتے ہیں, دو خدا نہیں ہو سکتے, تو مجھے خدا بنا, دنیا خدا مت بنا. ہم کو چاہیے کہ امام کے لیے تیاری میں ہمارا دل خدا میں لگا, قرآن میں لگا, دنیا کے کام کر لیں, تھوڑا بہت انجوائے بھی کر رہے, لیکن دل نہیں لگا. انجوائے کرنا دل لگانا الگ ہوتا ہے. اب صرف لوگوں دنیا سے, مجھے تو یہی چاہیے, مجھے یہی برانڈ چاہیے, یہی کار چاہیے, مکان میرا ایسے ہی بنے, اتنے کریکشن ہو جائے, یہ سب دنیا پرستی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں بیاہ پہ اہل بیت اور بیاہ کے نام زمان کے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو مردہ نہ کرے, زندہ کرے, آنکھوں میں بس بصیرت ہے, کان سننے والے بنائے, دل اللہ کو یاد کرنے والے بنائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم امام کے مشن میں ان کا ساتھ دیں. امام کا مشن یہ کہ ہم جہاں رہیں, جس کمیونٹی میں رہیں, وہاں پر اسلام کو قائم کریں. الحمدللہ رب العالمین, اللہ قوم العالمین.